বারে দিগার বা আবাসে বলেন সালাওয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوب العاشقين والعارفين الذي صورته نسخة الملك والملكوت وروحه نسخة اللاهوت والجبروت واسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق দরুদ ভেজে মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ পর। মুমিনে কেরাম, আব তক জিতনে ভি তবরকাত কা ইহতেমাম হুয়া হে মুমিনিন কি তরফ সে উন তমাম তবরকাত স্পন্সর করনে ওয়ালোঁ কে মরহুমিন ওর খুসুসান আজ সৈয়দা সাঈদা বানু বিনতে সৈয়দ ইবরার হুসেন, ইসমত জাহরা বিনতে মোহাম্মদ হুসেন, ইনকি সালে সওয়াব কে লিয়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত ফরমায়ে। বিসমিল্লাহির রহমান আলহামদুলিল্লাহ মালিকি নাস্তাইন সুবহান আলিম আও আল্লাহ বর মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ সালাওয়াত। আইজান মোহতরম, আপকি খিদমত মে জনাব বখতিয়ারি সাহেব নে ভি কাফি জজ্বাত ওর জোশ জজ্বে কে সাথ গুফতগু কি। মে ইয়ানি দু তিন দিন সে সুন রাহা হুম ই চিজে, মুঝে নেই সমঝ আ রহি কে আলি কে মাননে ওয়ালোঁ কো সখাওয়াত পর মজবুর করনে কে লিয়ে ইতনি কোশিশে কিউঁ কি জাতি। হ্যাঁ, ইয়ানি খুদা গওয়াহ হ্যায় উস করিম জাত কে পেরোকারোঁ কো ইতনে জজ্বে কে সাথ ওর উনকে জজ্বাত কো উভারনে কে লিয়ে আগর ইতনি জজ্বাতি তকরির করনে কে বাদ আপকে জজ্বাত উভর যায়ে তো ইসকা মতলব হ্যায় কে আপ তকরিরোঁ ওয়ালে হি হ্যায় না। এই মুঝে আচ্ছা নেই লাগতা ইয়ে মে সাফ কহতা হুম কে সব কুছ আপকে সামনে হ্যায় আপ হি ইয়াহাঁ আতে হ্যায় বড়ে আরাম সে সুকুন সে হর কিসম কি সহুলত আপকে লিয়ে মুহাইয়া হ্যায় ইস ইদারে মে তো বখল সে কিউঁ কাম লিয়া জা রহা হ্যায়। ইয়ানি আগর ইয়ে তো হুসনে ইত্তেফাক হ্যায় কে জনাবে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা উনকে নাম সে মনসুব ঘর কি ছত টপক রহি হ্যায়। ইয়ে তো হুসনে ইত্তেফাক হ্যায়, ইসকে লিয়ে তো আপ जिए मरे देना ही है या नहीं देना, इसके लिए तो देना ही है। अगर ये नबी होता, छते नबी होती, अल्हम्दुलिल्लाह नया मकान होता, तो क्या फिर भी आप लोग देने में हिचकिचाहट महसूस करते? होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दर जहां पर हम रिस्क के इल्म खाने आते हैं, ये हमें ये नहीं सिखाता। अब मुझे नहीं मालूम कि किस मुल्क की पुलिस हमारी जेबों पे खड़ी है इतनी सख्त, हाँ इतनी सख्त पुलिस तो मैंने कहीं नहीं देखी। जबकि अजीजों अली का तो रहे इम्तियाज ये था, सखावत की बात करो, क्योंकि मौजूए गुफ्तगु भी यही है कि अल्लाह करीम जात है तो उसकी जूदो सखा का मजहर अली है। जिस तरह बगैर हिसाब के वो जात अता करती है, ऐसे ही अली अता किया करते थे बगैर हिसाब। किसी ने हातिम ताई का नाम अस्हाब में से गलती से लिया कि बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। मौला ने कहा क्या सखावत करता था? कहते हैं जो फकीर आता था तो 90 दरवाजों से होके गुजरता था और खैरात ले जाता, 90 दरवाजों से खैरात बांटा करता था हातिम ताई। मौला फरमाते हैं कि क्या आपका सखी और सखावत की तारीफ यही है कि मजबूर और मोहताज को 90 दरवाजों में से गुजार के गनी बना दिया जाए? जो सखी होता है वो दूसरे दरवाजे का मौका ही नहीं देता, या देता है? वो सखी ही नहीं जिसके दर पे सवाली आए और दूसरे दरवाजे पे जाने का एहतियाज बाकी रहे। सखी वो नहीं है जो 90 दरवाजों में से एक फकीर को गुजार के गनी बना दे, सखी वो है जो एक ही दफा इतनी अता करे दोबारा हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। या तो अजीजो ऐसी सखावत का मजहर तुम्हें भी होना चाहिए। तखल्लकु बे अखलाक इल्ला, ये जो अखलाक इलाहिया इन जवाब के अंदर है ये तो बहुत छोटी सी बात है। उन अखलाक के मालिक ये बशर हो सकता है। तखल्लकु बे अखलाक अजीजो, यानी मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्यों इतना तामुल हो रहा है इन्फाक में। तामुल नहीं होना चाहिए, यहां सिर्फ आपकी आमद नहीं बल्कि अजीजो आपकी आरवाह के लिए, आपकी तरबियत के लिए, आपकी आरवाह, आपकी जानों को महफूज बनाने के लिए अहतमाम किया जाता है। बताओ किसका घर होगा जो टपक रहा हो और वो एक दिन भी इंतजार करे? हाँ? जब अपने घर की बात आती है दूसरा दिन नहीं आने देते क्या? ये दरे जहरा जहां पे हमारी जबीनें झुक जाती हैं, ये उस दर से भी कम है? यानी खुदारा एक वक्त मुकर्रर कीजिए कि ये बार बार तुम्हें कहना ही ना पड़े। आओ आगे बढ़ो और इस इदारे को आगे चलाओ, यहां से अपना मकसद हासिल करो। ये आपके लिए पनागाह है, आपकी औलाद के लिए पनागाह है। हुसैन की अतियात, जहरा की दुआएं, अली की अताएं गैर होती जा रही हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है, ये कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम चाहते हैं पूरे दुनिया को अली वाले बना दें, दुनिया हमसे आके अली वाला ले जाए, ये कैसे हो सकता है? इस पे गौर करो अजीजों, हमारी नस्लें गैर हो रही हैं, खुद को ना देखो कि कितने बड़े आजादार हो, कितने बड़े गिरिया को ना हो, कभी अपनी औलाद के बारे में सोचो वो कितना आती है यहां, इसकी तरफ तवज्जो करो अजीजों, गफलत से निकलो, आओ अपनी नस्ल को महफूज बनाओ, अपनी जानों को महफूज बनाओ। यहां से जिसके यहां औलाद नहीं होती, नजर मानते हैं करबला जाऊंगा, नजफ जाऊंगा, है ना ऐसा, जब आ जाती है तो फिर यहां बेच देते हो। क्या इससे भी बढ़कर कोई खयानत हो सकती है? अजीजों ये सही नहीं है, हमने अपनी नस्ल को महफूज बनाना है, जैसे हम हैं, जैसे बाप हैं वैसे ही बेटे होने चाहिए, जैसे माएं बाहिजाब हैं बाहया हैं बेटियां बाहया होनी चाहिए। अमेरिकनाइज नहीं करना अपनी औलाद को, अमेरिका के किसी कानून में नहीं लिखा कि जो यहां रहेगा वो हम जैसे बन के रहेगा, कहीं नहीं लिखा, कोई नहीं दिखा सकता, ये हमने दिखा दिया है, ये हमने बता दिया है। ये अजीजों अपनी नस्लों पर रहम करो, बचाओ अपनी नस्लों को, कहां जा रही हैं हमारी नस्लें? कभी मैं, यानी ये तो मोतरजा बातें थी बीच में आई, वरना कभी आप लोग अपने गरेबानों में झांको, देखो अपने घर में क्या हमारी सीरत, हमारा किरदार, हमारे घरों का माहौल एक अली के मानने वाले के घर की तरह है? कभी गौर करो, ईमान सलमान सुन सुनकर दाद देना ये और बात है, अपने घर का माहौल खाना सलमान जैसे बनाना ये और बात है, सिर्फ जबानों से नहीं चलेगा कि हम खाली वाह-वाह करते रहें और खुद को धोखा देते रहें। नहीं अजीजों, अख्तियारी साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, ये प्रैक्टिकल रिलीजन, कोई ये कोशिश न करे कि अपने ऊपर इस्लाम का लिबादा भी ओढ़े और अमल इस्लाम के खिलाफ हो, ये किसी को इजाजत नहीं है। हाँ ये इजाजत है कि वो दीन छोड़ सकता है, बेदीन हो सकता है, मगर दीन के लिबादे में दीन को बदनाम करने की इजाजत कहीं नहीं है। ये तो अमेरिका है, हाँ कोई और ऐसा मुल्क आबाद हो जाए जहां पे तुझे जाना पड़े वो इससे भी आगे हो, फिर भी तुझे हुसैन ही बन के रहना है। ये सोचें, ये खाली वहम व गुमान ये दिमागों से निकालो, अमरीका आगे किसी को पर नहीं लगते, या लग जाते हैं? हाँ, लोगों को लग जाते हैं, हमारे उतर जाते हैं। लोगों को लग जाते हैं, हमारे उतर जाते हैं। अजीजों, ये बहाने, ये मुल्क ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, हम क्या करें? 911। मैं माजरत चाहता हूं, क्या करूं, मेरा दिमाग ही उधर बदल गया। ये 911 वाले बहाने कहीं और करो। बताओ, किस मुल्क का कानून कहता है कि मां बाप का बच्चा मां बाप की बेहतरामी करे? कहता है कोई? क्या इसी मुल्क के कानून में रिस्पेक्ट नहीं है? 911 फोन हो जाएगा, कॉल हो जाएगी, भाई होने दो। अजीजो, खुदारा अपने घर इबारों में झांको, कबल इसके कि कल मां और बाप दोनों के घर इबारों में अली का भी हाथ हो, जहरा का भी हाथ हो। ये याद रखो, मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा और न कोई तकरीर कर रहा हूं, ये हक बयान कर रहा हूं। हमने दुनिया के हाथ अपना दीन बेच दिया, डॉलर के हाथ अपना वकार बेच दिया। ये दीन तो नहीं, ये इंसानियत नहीं है कि हम डॉलर की खातिर अपनी इज्जत और वकार बेचते हैं। अजीजों, सब इसके बारे में सोचो, अपने गरीबानों में झांक के देखो कि तुम कहां खड़े हो, फिर आपको कदर हो जाएगी कि अमेरिका कैसी जन्नत है। कभी गौर करो इस पर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बात निशानियों पे हो रही, आज शायद मौजू के आखिरी कड़ी हो, क्योंकि कल शबिया शुरू होगी, फिर उसके बाद तो इतना ही मैं काफी समझता हूं। जितनी गुफ्तगू हो गई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके दिमाग और आपके ईमान मुअत्तर हुए होंगे मकाम अहले बैत से। निशानी होनी कैसी चाहिए? चूंकि आज मैं थोड़ा सा खुद हकीकते निशानी की, निशानी होनी कैसी चाहिए, और ये बात तो तय हो गई कि निशानियां जो हमने देखनी है वो एक नूर की निशानियां देखनी है। किसकी? नूर की निशानियां है ना, अल्लाह नूर है, जिस्म व जिस्मानियात या रखता है, हमारा खुदा जिस्म नहीं रखता। उसका कोई महल कोई मकान नहीं है। तो अब जब उसकी जात नूर ही नूर है, जिला ही जिला है, रोशनी ही रोशनी है, आप कहां से लाए ऐसी निशानियां जो नूर ही नूर नजर आए? कहां से लाए? तो निशानी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका जिक्र हम जैसा हो। तवज्जो चाह रहा हूं, निशानी ऐसी होनी चाहिए जिसका जिक्र हम जैसा हो, फिक्र उस जैसी हो, है ना, रंग हम जैसा, ढंग उस जैसा, नाम हम जैसा, काम उस जैसा, शक्ल हम जैसी, अकल उस जैसी होनी चाहिए ना या नहीं? ताकि जब यहां रहे तो बिल्कुल बशर नजर आए, यहां रहे तो बिल्कुल बशर नजर आए, जब वहां जाए नूरियों के पास जाए उनका उस्ताद बन जाए। हां, इस तरह की निशानी हो हमें मंजूर है, लेकिन अगर निशानी जाते खुदा के साथ टकरा गई, जाते खुदा के साथ टकरा गई, या खुदा की सिफात जातिया से टकरा गई, तो फिर वो निशानी नहीं, वो शिर्क हो जाता है, वो शिर्क हो जाता है। क्या मतलब? कि हमने निशानी को निशानी बना के रखना है, उस जैसा नहीं बनाना। हां, उस जैसा बनाएंगे शिर्क हो जाएगा, कि वो बिल्कुल उस जैसी नहीं हो सकती। लेकिन यह भी खतरनाक है कि उसकी निशानियों को हम बिल्कुल अपने जैसे बनाएं। उस जैसा बनाएंगे मुशरिक कहलाएंगे, अपने जैसे कहेंगे मर्दूद हो जाएंगे। अपने जैसे कहोगे मर्दूद हो जाओगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए तो आगाज़े तखलीक कायनात से अल्लाह ने किसी को सफीउल्लाह कह दिया, किसी को रूहुल्लाह कह दिया, किसी को खलीलुल्लाह कह दिया, किसी को हबीबुल्लाह कह दिया, किसी को कलीमुल्लाह कह दिया, किसी को वजहुल्लाह कह दिया, किसी को लिसानुल्लाह कह दिया, किसी को आइनुल्लाह कह दिया, किसी को यदुल्लाह कह दिया। ये इसीलिए कहा क्योंकि कल की गुफ्तगू वो इल्म खुदा के मजहर पर थी, आज की गुफ्तगू कुदरत खुदा के मजहर पे होगी। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। निशानी इल्म तो हमें समझ आ गई कि यूं होना चाहिए, मगर जो जात आला कुल्ले शैइन कदीर है, ये सिफत है ना हमारे खालिक की कि हर जर्रे पर उसको कुदरत हासिल है, वो कादिर मुतलक जात है, कुदरत उसकी जाती सिफत है। فعلی نہیں ہے. تو اس جیسی نشانی کہاں سے لائے کہ جب اس کی طاقت کو دیکھیں قدرت خدا نظر آئے. ہاں جس کے ہاتھوں کی قوت دیکھیں طاقت دیکھیں ہمیں ید اللہ نظر آئے. اس بے جسم ذات کا ہاتھ نظر آئے. کہاں ہے وہ؟ وہ کہاں؟ لوگ تو لڑائیوں کے لیے پڑھتے ہیں نا. مجھے خیبر کی طرف جانا پڑے گا مگر لڑائیوں کے لیے نہیں, لڑائیوں کے لیے نہیں, قدرت خدا کا مظاہرہ دکھانے کے لیے. کیونکہ خیبر میں طاقت بشریت نظر نہیں آئی. طاقت بشریت نظر نہیں آئی. طاقت بشری تو تقریباً 39 دن استعمال ہوتی رہی. نہیں تھی؟ نہیں تھی. 39 دن کوئی ڈنڈا لے کے واپس آیا, کوئی پھریرا, وہ علم بھی سلامت نہ رہا. نہ رہا نا 39 دن. اب رسالت پریشان کہ بھائی یہ کیسے لوگوں میں گھر گیا, خدایا کہاں بھیجا مجھے؟ سامنے سے قوت شیطان کا مظاہرہ ہو رہا ہے. قوت شیطان کا مظاہرہ ہو رہا ہے. چونکہ مرحب مظہر قوت شیطان تھا, نہیں تھا؟ مدینہ سے بھاگے ہوئے لوگ تھے. کہاں سے؟ مدینہ سے بھاگے ہوئے لوگ یہودی تھے. کون تھے؟ آج کل یہ نام لیتے لیتے بھی ڈر لگتا ہے, ہے نا, ہے نا. مگر ہم تو نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے. ہم تو نہ کل ڈرے ہیں نہ آج ڈریں گے اور نہ کل ڈریں گے, ہے نا. کون تھے خیبر کے باشندے باسی؟ ہاں یہودی تھے نا. جب مسلمان قلعہ قاموس فتح کرنے گئے 39 دن بھاگم دوڑ ہوتی رہی, آنا جانا لگا رہا, آمد و رفت ہوتی رہی, قلعہ قاموس فتح نہیں ہو رہا. تو مرحب نے کئی دفعہ قلعے کی کھڑکیوں سے جھانک کر کہا تھا, یاد رکھو یہ جملہ, جھانک کر کہتا تھا, او مسلمانوں کہاں ہے تمہارا وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے؟ یہ تانا دیتا تھا, کہاں ہے تمہارا خدا جو قادر مطلق ہے, جس کی قدرت عرش سے لے کر فرش تک چلتی ہے, کہاں ہے تیرا پروردگار, لاؤ سامنے. اور وہ جسم بشر میں یا شکل بشر میں وہ جاتی رہی, جس طاقت کا مرحب تانا دیتا تھا وہ جاتی رہی. اور جیسے جاتی تھی ویسے نہیں اس سے برے حال میں واپس آتی تھی, برے حال میں. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہاں ہے تمہارا خالق جو علی کل شیء قدیر ہے, جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے, کہاں ہے؟ بتاؤ مسلمان کیا جواب دیتے؟ مسلمان بھی پریشان اور مسلمانوں کا رسول بھی پریشان. پریشان نہیں اور کیا, 39 دن کھاتے رہے پیتے رہے, بیٹھکیں ہوتی رہی نہیں. اس عالم پریشانی میں آواز آئی ناد علیان, ناد علیان. میں آگے نہیں بڑھ رہا, مرحب کہہ رہا ہے وہ تیرا اعلی کل شیء قدیر خالق کہاں ہے. ہاتف سے آواز آتی ہے ناد علیان جبکہ رسول میدان خیبر میں کھڑا ہے, ہے یا نہیں؟ رسول خود کھڑے ہیں بنفس نفیس, ہاتف سے غیب سے ہی آوازیں آ رہی ہیں ناد علیان, حبیب علی کو آواز دو. وہاں سے تانا قادر مطلق کا مل رہا ہے. کہاں ہے تیرا قادر مطلق پروردگار؟ یہاں سے وہی آواز آ رہی ہے علی کو آواز دو. کون سے علی کو؟ مدہرل عجائب. میں لفظ یوز کرتا رہتا ہوں نا مظہر, جہاں پر وہ محل وہ مکان جہاں پر عجائبات ظہور کرے. مظہر العجائب کا یہ مطلب ہے میرے حبیب علی کو آواز دو جس کے وجود پر عجائبات ظاہر ہوتے ہیں. کاش مسلمانوں کو صرف یہ مظہر العجائب ہی سمجھ آتا, پورے علی کو سمجھ جاتے یہ. کاش یہ مسلمان یہ حافظ قرآن صرف مظہر العجائب کو سمجھتے نا, ہمیں کبھی نہ کہتے یہ کافر ہیں, ہمیں کبھی یہ تانا نہ ملتا یہ مشرک ہیں. مظہر العجائب حبیب تجد ہو عونن لکھا, میرے حبیب وہ تیرا ناصر و مددگار ہوگا. تیرا ناصر و مددگار ہوگا کہاں؟ فن نوائب. جس قسم کی مصیبت آ جائے کیونکہ ان نوائب ہے نوائب نہیں ہے, الف لام کے ساتھ آیا ہے لفظ, یعنی جس قسم کی مصیبت میرے حبیب تم تصور کر سکتے ہو, جس قسم کی مصیبت میرے حبیب تم تصور کر سکتے ہو, اس تمام اس ہر مصیبت میں अली तेरी मदद करेगा। आप ख्वाबो मुसीबत ख्वाबो मुश्किल जिस्मानी हो या रूहानी, जैसे भी कुल्लो हम में अजीब कसीदा पढ़ा गया, अल्लाह जाने पढ़ने वाला कौन था, क्योंकि तारीख ने लिखा है हातिफ से आवाज आई, हातिफ से आवाज आई। वल्लाहु आलम कि ये कसीदा किसने पढ़ा, पढ़ने वाला मालूम नहीं है। लोग कह देते हैं जिब्राइल ने कहा होगा, अरे ये जिब्राइल को कहां से इख्तियार, मौलवी तो हमें इख्तियार नहीं देता कि या अली कहें। क्या जिब्राइल, क्या जिब्राइल की मजाल, जो रसूल से कहे तू अली को पुकार तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। मेरे ख्याल में कोई हम जैसा मौलवी तो जसारत कर सकता है ये कह के, मगर जिब्राइल ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये वही कहेगा जिसको हकीकत अलविया का इल्म है, जिसको हकीकत रिसालत का इल्म है, ये वही कह सकता है कुल्लो हम्मिन वगम्मिन। मेरे हबीब सारे हम और सारे गम, कभी फर्क मालूम हुआ हम और गम में? हाँ, लफ्ज तो हम यही यूज करते हैं ना कि हम भी एक हैं गम भी एक है। नहीं, ऐसा नहीं, हम एक नहीं हैं, तुम अलग हो हम अलग हैं। हम और गम में फर्क करो। हम उस वक्त कहा जाता है जब मुश्किल और मुसीबत का ताल्लुक मादे से हो जाए। किससे हो जाए, यानी जाहिर से हो जाए। और गम उस वक्त कहा जाता है कि मुसीबत हो मगर जाहिर ना हो जाए। गम है, मुसीबत है, मगर मेहनत से शहूद पे आ नहीं सकता वो। मैंने बड़ा जुमला कह दिया, जो मेहनत से शहूद पर जाहिर ना हो सके, जिसको जहूर ना मिल सके, वो होता है गम। क्या मतलब कि ऐ रसूल हबीब आवाज दो उस जात को कि जिसके पास उस गम का भी इलाज है जो नजर आ सके। और उसके पास उस मुसीबत का भी इलाज है जो नजर ना आ सके। कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली। मेरे हबीब सिर्फ या नहीं कहने से सारे हम व गम दूर हो जाएंगे। रसूल के तो हम व गम दूर हो जाते हैं, मगर नारा लगने के बाद आपका हम व गम दूर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। जो वेस्ट में बैठी हुए हैं उनके हम गम अभी दूर नहीं हुए। कुल हम मिन व गम मिन सैयन जली बिविलायते कया अलियो या अलियो या अली। हम एक बार कहते हैं आग लग जाती है। नहीं है ऐसा? नारा एक दफा लगता है अली का, जबकि कायल भी मालूम नहीं कि अल्लाह ने लगाया या जिब्राइल ने लगाया, मगर लगाया तीन दफा। को मेरे हबीब आवाज दे दी गई और अली कंबर के साथ खैबर में हाजिर हुए 80 किलोमीटर का फासला तय करके हाजिर हो गए। आंखों में दर्द, आशोबे चश्म, या रसूल खुदा क्यों बुलाया मुझे, क्या उम्मती काम ना आ सके? ये मुझे घर से क्यों बुलाया, क्या पहलू में बैठने वाले काम ना आ सके? यही तो हम रोते हैं कि जहां पर पहलू काम ना आए वहां दिल से काम लो।
दुश्मन नहीं रहे जो अली ओ बतूल के, दुश्मन नहीं रहे जो अली ओ बतूल के, है मोहतरम तमाम सहाबी रसूल के।
सुभान अल्लाह।
सोहबत में बैठने से तो मिलता नहीं शरफ, सोहबत में बैठने से तो मिलता नहीं शरफ, गुलशन में साथ रहते हैं कांटे रसूल के।
सुभान अल्लाह। खादिम हाजिर है, हुक्म कीजिए। या अली, आपको भी मालूम है 39 दिनों से मदीने से बाहर हूं। उनतालीस दिन गुजर गए मगर यहूदियों का किला फतह ना हो सका। हुक्म कीजिए, ये अल्फाज हैं तारीफ। या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए, अभी तो फजर की नमाज हुई ही नहीं, नमाज फजर से पहले फतह करके न देखाऊं अली न कहना। अली न कहना, जब पता चल गया ना कि मदीने से भी कोई आया है तो सब जमा हो गए। और अली की जब लिसाने इलाही की गुफ्तगु सुनी तो पहलू में खड़े कहते हैं, या अली इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, हम तीन बार अपनी किस्मत आजमा करके आए हैं। हम आजमा चुके हैं अपनी किस्मत। बहुत बड़ा पहलवान है इस किला में, जब सिर्फ सर निकालता है हमारे ईमान निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ना माजी में इतना कमजोर ईमान रहा है, ना आज है ना कल होगा, क्योंकि हमने उस ईमान को ईमान माना जो कुल ईमान बन के गया था। कुल ईमान बन के गया था। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरा पढ़ सकूं, मैं तो सिर्फ मजहरे कुदरते खुदा दिखलाने के लिए इतना सफर करके आया हूं। क्योंकि यहूदी का ताना था, कहां गया आला कुल शैन कदीर खुदा, और जवाब में कोई नहीं मिला हबीबे खुदा को सिवाय अली के, सिवाय अली के। हो गई फतह, क्योंकि अब मुझे आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब अली आ ही गया तो फतह हुई होगी।
पहुंचा जो अली तक, वो खुदा तक पहुंचा। आका को मेरे दस्ते खुदा कहते।
सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह।
इजाजत है या रसूल अल्लाह, हाथ लगा दूं किले को, है ना, हाथ लगा दूं केले को। चलो पहले हाथ नहीं, अलम गाड़ के दिखाता हूं। क्योंकि लोहा जिसके लिए मोम बन जाए वो दाऊद हुआ करता है, और जिसके अलम के लिए पत्थर अपना सीना खोल दे उसे कुदरत खुदा कहते हैं। अल्लाह या ऐसे बहुत बुजुर्ग थे वहां, बड़े बुजुर्ग थे वहां, मगर फर्क क्या है अजीजों, फर्क क्या है, हाँ? درود بھیجیے محمد و آل محمد. علم سینہ حجر میں گاڑ کر علی آگے بڑھے, علی آگے بڑھے. وہی حسب عادت, حسب عادت وہ یہودی پھر سے سر نکالنے لگا, پھر سے سر نکالنے لگا. علی نے اوپر دیکھا, کہا وہ اور ہے میں اور ہوں. اب کام آنکھوں سے نہیں چلے گا, جب تک سینہ بسینہ نہ ہو جائے. وہ آنکھیں دکھا دکھا کے ڈرانے والے اور ڈرنے والے اور تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر و سینہ سے پورے جسم سے ذوالفقار نکالنے والا علی اور ہے. یا نیچے آؤ, نیچے آؤ. بڑی شان و شوکت سے اترا, بڑی شان و شوکت. ختم کر دیا چونکہ میں پورا نہیں پڑھ رہا, میں صرف ایک جملہ سمجھانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں, صرف ایک جملہ. قلعہ فتح ہو گیا, ہو گیا. وہ در جو لگا ہوا تھا, در خیبر جو تھا, دروازہ جو تھا, مختلف مختلف تاریخیں ہیں. کوئی کہتا ہے اتنا وزنی ہے, کوئی کہتا ہے اتنا وزنی ہے, اتنے منوں کا بنا ہوا تھا, مختلف بات. مگر اتنی بات سمجھ آ جاتی کہ وہ دروازہ اتنا اتنا بھاری تھا کہ قوت بشریہ کے بس کی بات نہیں تھی. قوت بشری کا مظاہرہ وہاں کام نہیں کرتا تھا. اتنی سمجھ آتی ہے کتابوں سے, آپ خواب وہ جتنا بھی وزنی تھا مگر میرے مولا کی طاقت سے تو پھر بھی کم تھا. وہ دروازہ پہلوان تو کیا, قلعے کے دروازے علی نے اکھاڑ دیے. جب سب باہر نکل آئے, علی سے پوچھا, یا علی اتنا بھاری دروازہ ہم تو ایک علم نہ اٹھا سکے. ہمارے تے علموں کے پھریرے اڑ گئے, یہ اتنا بھاری دروازہ کیسے اٹھایا. اب سننا جواب. مظہر قدرت الہیہ, ما قلعتو باب خیبرہ بے قوت جسمانیت بل قلعتہ بے قوت ربانیہ. میں نے دروازے پر کوئی بشر کا ہاتھ نہیں رکھا تھا. میں نے نہیں اکھاڑا قوت جسمانی سے, میں نے وہاں جسمانی قوت کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. ہر جگہ تو قوت جسمانی کا مظاہرہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ये तो तुम्हारे साथ चलने के लिए करता हूं। कभी कभी यदुल्लाह की तासीर भी तो दिखानी होती है ना। कि ये सिर्फ दस्ते अली नहीं आए, ये दस्ते आला है। तो सुन लो मुसलमानों, मुझ अली ने वो बाबे खैबर कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा है, अगर उखाड़ा है कुव्वत रब्बानिया का जोर लगा के उखाड़ा है मैंने। अल्लाह जिंदगी और सेहत दे यावर साहब को। इसने माहौल ही बदल दिया। जैसे अली कुदरत खुदा की निशानी थी, ऐसे ही अब्बास कुव्वत अली की निशानी। ऐसी अब्बास कुव्वत अली निशान, कोई फर्क नहीं। जैसे वो मजहर था, ऐसे ही अब्बास मजहरे अली था। क्योंकि बड़ी तमन्नाओं के साथ मांगा था खुदा से, बड़ी तमन्नाओं के साथ। अल्लाह जाने अली की आंखों में कौन सा मंजर था जो अकील से कहते हैं, भैया अकील मुझे एक बहादुर खानदान से शादी करा। ये अली की निशानी है अजीजो, अली की निशानी है। टाइम बहुत गुजर चुका है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ कि जिस मकसद के लिए अली ने अल्लाह से अब्बास मांगा था, अब्बास पूरा उतर गया, पूरा उतर गया। बचपन है, मस्जिद कूफा है, मौला अली खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते निगाह चेहरे हुसैन पे पड़ी, ऐसे लगा हुसैन जैसे प्यास लगी हो, जैसे प्यास लगी हो। ये वाकया अल्लामा हुसैन बख्शजाड़ा मरहूम अल्लाहु मकामहू, बड़े आले मेहरबानी गुजरे हैं, ये उन्होंने लिखा है कि जब नजर पड़ी है चेहरे हुसैन पे तो प्यास नजर आई, और हुसैन और अली वो मंजर बर्दाश्त न कर सके। कंबर से कहते हैं, कंबर शायद शहजादे को प्यास लगी हुई है, ऐसे पानी पिला दे। जनाब अब्बास भी पहलू में बैठे हैं, जब सुना ना हुसैन को प्यास लगी है, और कंबर से मौला ने कहा जल्दी से दौड़े घर में। अम्मा उम्मुल बनीन से कहती हैं, अम्मा जल्दी से जाम दे दो। कहते हैं, बेटा क्या हुआ? कहा मेरे आका हुसैन को प्यास लगी है, मगर बाबा अली ने कंबर से कहा हुसैन को पानी पिलाओ। अम्मा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि अब्बास के होते हुए हुसैन को कोई और पानी पिलाए। अजीजो अब्बास ने जाम में पानी लिया, क्योंकि छोटा था ना, سر پہ جام پانی کا رکھ دیا, مسجد کوفہ کی طرف چل رہے ہیں, کبھی پانی ایک طرف گر رہا ہے کبھی دوسری طرف. دور سے علی نے دیکھا عباس پانی لا رہا, کمبر کے آنے تک عباس نے پانی پلا دیا. جب پانی پلایا علی نے ایک چیخ دی, علی نے ایک فریاد کی, او میرے بیٹے عباس, آج تو حسین کو پانی پلا دیا, کاش تیرے یہ بازو سلامت رہے اور رسول زادیاں پیاسی نہ ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آج خالق مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی سننے کی توفیق دے, کیونکہ عزیز و مصیبت عباس معمولی مصیبت نہیں ہے. حسین 70 جنازے اٹھا چکا, تنے تنہا اٹھائے ہیں 70 لاشیں, مگر کسی جنازے پہ نہیں کہا میری ثانیہ زارا بہن میری کمر جھک گئی, کسی پہ بھی نہیں کہا. عزیزو جب سارے لاشیں لائے ہیں حسین, تو جناب عباس مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو کر دس بستہ ہو کر, آقا مجھ عباس کو بھی مرنے کی اجازت دے دو. جب حسین نے چہرہ عباس کو دیکھا نا, علی نظر یاد, علی یاد آیا اسے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے آقا حسین مجھے بھی اجازت دے. مولا حسین کہتے ہیں بھیا عباس آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہو, آپ تو علمدار ہیں. آقا یہ عجیب قسم کی علمداری ہے, آقا میری علمداری تو اس وقت تھی جب میں منا پہ علی اکبر کھڑا تھا, میں سارا پہ قاسم کھڑا تھا, میرے پیچھے اولا محمد تھے, آپ تو ان کے لاشیں خیموں میں رکھے ہیں, میری علمداری تو اجڑ گئی کربلا میں. آقا اجازت دیجئے. عزیزو حسین سمجھ گئے عباس اور خیموں میں نہیں رہنا چاہتے, مگر کان میں ایک جملہ کہا بھائی عباس ضرور جائیے میدان میں مگر تھوڑی دیر کے لیے خیموں سے دور آئے, کچھ لمحات کے لیے بھائی عباس خیموں سے دور آؤ. عزیز و حسین آگے آگے پیچھے عباس خیموں سے دور چلے, خیموں سے دور چلے. عباس سے کہتے ہیں بھائی عباس ابھی موقع ہے, ابھی اس قابل ہو کہ مجھے گلے لگا لو. آقا خیموں کے پاس کیوں نہیں؟ کہا آخری گلے لگانا ہے تجھے, کہیں ثانیہ زہرا نہ دیکھ لے, کہیں شہزادیاں نہ دیکھ لے. مگر عزیز و بیبیوں کی نگاہ تھی عباس پر, خیموں سے باہر حسین نے عباس کو گلے لگا لیا. خیموں میں ثانیہ زہرا نے کہا میری ام کلثوم بہن آؤ گلے لگ جاؤ. خیموں میں شہزادیوں نے گلے ملے, خیموں سے باہر حسین و عباس. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزیزو جب گلے ملے اور عباس جانے لگے, پیچھے سے ایک آواز آئی ہے چچا عباس امو جان میدان جانے لگے ہو, میرا بھی ایک کام کر لینا, جب عباس خیموں کے اندر آئے نا 40 بچے خالی جام ہاتھوں میں لیے सकीना सबसे आगे खड़ी है। अम्मुजान मैदान जा रहे हो, ये मशकीजा ले लेना, हो सके तो पानी ले आना, मेरा असगर बहुत प्यासा है। मेरा लिए असगर 3 दिन का प्यासा है। अजीजो अब्बास खुद झुक गए, शहजादी से कहा, शहजादी अपने हाथों से मशकीजा डाल दो। अजीजो अब्बास ने मशकीजा लिया, मैदान की तरफ जाने लगा। दौड़ते दौड़ते रहवार को चलाते चलाते लश्कर को 2 टुकड़े कर दिया। फुरात में घोड़े को दौड़ाया, घोड़े को डाल दिया। जब घोड़े को डाल दिया और मशकीजे में पानी भर दिया, एक मर्तबा अब्बास ने अश्किया की तरफ आंखें उठा के कुछ कहा। कहते शामियो, क्या तुम इसी पानी पे नाश करते थे? आओ अगर किसी की मजाल है, आज पूरा दरिया अब्बास की मुट्ठी में बंद है। किसी की मजाल है, आज ले ले अब्बास से। मगर अजीजो वफाए अब्बास को सलाम के अब्बास तो अब्बास है, रहवारे अब्बास ने भी मुंह नहीं लगाया पानी को। प्यासा दरिया से निकला अब्बास, दाएं हाथ में, दाएं बाजू पे मशके सकीना और दूसरी तरफ अलम हुसैन। रहवार से कहता है, रहवार जितना हो सके जल्दी चले जाओ, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, बस किसी तरह से खैमे हुसैन तक पानी पहुंच जाए। अजीजो अब्बास खैमों की तरफ दौड़ रहे हैं, रहवार चला रहे हैं, मगर दाएं तरफ से एक जालिम ने ऐसा वार किया कि मशकीजा दाएं बाजू से बाएं मुंतकिल हो गया। अजीजो मैं ये वो नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कहूंगा कि क्या हुआ, इतना कहता हूं वो मशकीजा दाएं बाजू से बाएं आ गया। कुछ देर बाद बाएं से एक वार हो गई, वो मशकीजा अब्बास ने अपने मुंह में पकड़ा। सलाम हो वफाए अब्बास पर, मशकीजे की फिक्र है, दो शाने गिर गए, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जल्दी ले चल मुझे। अजीजो एक जालिम ने अब्बास खैमों की तरफ जा रहे, मगर एक जालिम ने जबीन अब्बास पे ऐसी वार की, जबीन जख्मी हो गई। दूसरे ने तीर चलाया, सीना जख्मी हो गया, मगर अब्बास फिर भी खैमों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तीर आया जो मशके सकीना को जाके लगा। अजीज अब्बास झुक गए रहवार पे, कह रहे रहवार बस अभी रुख मोड़ दे, अब्बास खैमा में नहीं जाना चाहता। अजीज और रहवार का रुख मोड़ गया उधर से खैमों में, खैमों में सानी जहरा ने आवाज दी, भैया हुसैन। अजीजो सारे बच्चों ने हाथ उठाए हैं, दुआ मांग रहे हैं, खुदाया किसी तरह से पानी आ जाए। मगर अजीजो अब्बास का रुख मुड़ गया, दोबारा से मैदान की तरफ जाने लगा। शहजादी ने कहा, भैया हुसैन मेरे अब्बास बादलों में छुप गए, अब्बास नजर नहीं आ रहे, जल्दी से मैदान की तरफ जाओ। हुसैन ने कहा, बहन मैं जरूर जल्दी जाता, मगर मेरी मजबूरी है, कमर साथ नहीं दे रही। मैं देखता रहा, अलम दाएं से बाएं हो गया, बाएं से दाएं आ गया, मैं देखता रहा, बहन इतनी ताकत नहीं रही कि भाई अब्बास की लाश उठा सको। اجركم على الله، اجركم على الله. عزیزو آپ تو سن نہیں سکتے یہ مصائب، آپ تو سن نہیں سکتے اللہ جانے حسین نے کیسے برداشت کیے، شانے کٹتے ہوئے گرتے ہوئے حسین نے کیسے برداشت کیے، ہم تو سن نہیں سکتے. اے حسین تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرے بھائی کے بازو گر رہے ہیں. عزیزو حسین حسین ذوالجناح پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رہبر آج مجھے جلدی لے جاؤ. عزیز و رہبر چلنے لگا، کچھ سفر کیا، کچھ قدم آگے بڑھا، مگر رہبر ایک جگہ پہ رک گیا. حسین کہتے ہیں رہبر شاید تو بھی تھک گیا ہے نا، کتنے لاشیں اٹھائے تم نے رہبر، آپ تھک گئے؟ کہتے ہیں آقا حسین میں تھکا نہیں ہوں، مگر زمین کربلا پہ دیکھو حجر اسود کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، شانہ عباس پڑا تھا. حسین روئے آگے بڑھے، ذوالجناح پھر رک گیا، رہبر آج کیوں رک رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا حسین میں کیا کروں، میرے مولا عباس کے ٹکڑے پڑے. عزیز و لشکروں کو ہٹاتے ہوئے کاٹتے ہوئے حسین لاش عباس پر پہنچ گئے. جب لاش پر پہنچے عباس کا سر اپنے زانو امامت میں رکھ دیا، کہتے ہیں بھیا عباس، بھیا عباس آنکھیں کھولو، تیرا بھیا حسین آیا ہے، آقا حسین آیا ہے. عباس کہتے ہیں آقا میں ضرور دیکھتا مگر ایک آنکھ میں خاک کربلا ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. حسین نے آنکھیں صاف کی، تیر نکالا. عباس سے کہتے ہیں بھیا عباس چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں خیموں میں، میں مجبور نہیں کرتا مگر چھوٹے بچے انتظار میں ہیں، کیا آپ کی لاش لے جاؤں؟ آقا میں جانتا ہوں میں تیرا بھائی ہوں، مگر بھائیوں کے لیے خصوصاً اس بھائی کے لیے جس کی ریش جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہو، مولا میں جانتا ہوں اس بھائی کے لیے جوان بھائی کی لاش اٹھانا قیامت سے کم نہیں. حسین مجھے یہی چھوڑ دے، مجھے خیمہ میں نہ لے جائے، کیونکہ میں سکینہ کے خشک ہونٹ نہیں دیکھ سکتا. عزیزو بس حسین نے لاش عباس چھوڑ دیا اور مشکیزہ اور علم اٹھایا، خیموں کی طرف جانے لگے. جب خیموں سے بچوں نے دیکھا، سکینہ نے دیکھا علم خیموں میں آ رہا ہے، سارے بچیوں کو بلایا کہ مبارک ہو پانی آ گیا، پیاس ختم ہو جائے گی. حسین جو قریب ہونے لگے سکینہ غور سے دیکھنے لگی، یہ میرے عباس تو نہیں ہے، بابا حسین آ رہے ہیں. عزیز و چیخ کر کے کہا بابا میرے امو جان کہاں رہ گئے؟ عزیزو بس دو جملے غور سے سن لینا، ساری رات رو گے. جب سکینہ نے پوچھا بابا میرے امو جان کہاں چھوڑ گئے، کہاں سکینہ کہاں بیٹا؟ وہ نہر فرات پہ رہ گیا. بابا مجھ سے تو پانی کا وعدہ کر گیا تھا. کہا بیٹا پانی نہیں آیا، مشکیزہ آیا. جب سکینہ کو معلوم ہوا کہ امو جان فرات پہ رہ گیا، دوڑ کے خیمے میں آئی، آواز دی او بچوں جو وعدہ سکینہ نے کیا تھا وہ وعدہ نبھا نہ سکی، کیونکہ میرا امو جان مر گیا. ماتم عباس.